ने अपने मन से घुसेड़ दी है। अथवा ये भी हो सकता है कि ये भगवान इस प्रकार कर ही नहीं सकते, और अगर की है तो ये बात मान्य नहीं है। अब भगवान ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, इसका तो उत्तर भगवान दे सकते हैं। हम लोग तो भगवान के चरित्र को लिखने वाले महानुभावों के शब्दों पर ही चल सकते हैं, और दो उपाय नहीं। लेकिन सोचना यह है कि चोरी वस्तु क्या है। चोरी होती है जो चीज अपनी न हो उसकी। अपनी चीज को कोई चाहे जैसे बरते है, वो चोरी नहीं होती। दूसरी बात, चोरी होती है किसी की चीज को छिपाकर अनजान में ले करके कोई भाग जाए, ये चोरी होती है। पर यहां ध्यान दे के देखें, दोनों बात नहीं है। संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान की नहीं है? संसार का कोई पदार्थ, संसार की कोई वस्तु, संसार का कोई भाव इस प्रकार का नहीं है जो भगवान की मालकी में न हो। सब चीजें भगवान की, इसलिए अपनी चीज को भगवान चाहे जैसे, चाहे जब, चाहे जिस प्रकार से ले ले, वो चोरी नहीं होती अपनी चीज। चोरी तो हम लोग करते हैं दिन रात, जो बड़े साहब बने हुए रहते हैं। ये जो भगवान की वस्तुओं पर मालकी करना, विराज किए हुए हम लोग सब, ये घर हमारा है, ये मकान हमारा, ये गहना हमारा, ये कपड़ा हमारा, ये वस्तु हमारी, ये यश हमारा, ये कीर्ति हमारी, ये शरीर हमारा, इस प्रकार भगवान की चीजों पर दिन दहाड़े चोरी नहीं करते, डाका डालते हैं, हमारी हमारी। भगवान हंसते हैं कि ये चोर बेईमान सब हमारी हमारी कह रहे हैं, इनकी तो रहेगी नहीं, छिन जाएगी सारी की सारी, और दंड मिलेगा वो अधिक नहीं। तो चोर तो हम हैं जो भगवान की चीज को हमारी कहते हैं। तो हम अपने को तो शाह माने, और भगवान अपनी चीज को आप ले लें, इसमें भगवान ने चोरी की, ये कहें, ये कहना बेसमझी है। दूसरी बात, चोरी अनजान में होती है, चोरी छिपी चीज की होती है। यहां तो जरा ध्यान दीजिए भगवान के माखन चोरी पर। उसी माखन चोरी पर सूरदास ने और बड़े बड़े महात्माओं ने कुछ पद कहे हैं। उसमें से दो एक पदों का अर्थ आज हमें करना है। एक दिन की बात है, यशोदा मैया माखन बिलो रही थी और बड़े आनंद से अपने लाला की ओर देख रही थी। क्या हुआ कि उसी समय एक गोपी आ गई, और गोपी आकर के दूर से खड़ी देखने लगी श्री श्याम सुंदर के मुखारविंद को। तो वो गोपी खड़ी देख रही है, मैया दही बिलो रही है, श्याम सुंदर पास खड़े हैं, और खड़े खड़े बोले कि मैया देख, तू मेवा पकवान के बात कहती है, बड़ा हो गया, जरा मेवा खाया कर, मिठाई खाया कर, मुझे ही अच्छे लगते नहीं, मुझको तो बस केवल मक्खन अच्छा लगता है, और तू अगर नहीं देगी तो देख मैं मचल जाऊंगा। मैया ने कुछ कहा नहीं, वो अपना मथानी में लगी रही। मैया ने सोचा ऐसे ही कहता है, ये पीछे से गए, मैया के पीछे से मटकी तो आगे रखी है, मैया मत रही है, मैया मतते मतते मैया की जरा भगवान की माया, लाला की बाल लीला याद करके मैया मुग्ध हो गई, मैया की आंख मुद गई, और अंदर ही वो अपना लाला के गुण का स्मरण करने लगी। इन्होंने देखा मैया ने तो आंख मीच ली, अब नींद आ गई, चलो मौका लगा। तो इन्होंने धीरे से हाथ डाल के मक्खन आ गया था, बिलो रही थी मथई, मक्खन आ गया था ऊपर, तो यूं ले करके मैया की वो मटकी में हाथ डाला और मक्खन द्वार मुंह में ले करके और पीछे खड़े हो गया। मैया ने आंख खोली, कहां गया रे, क्या किया? देखा मक्खन उखन लगा हुआ, खिला हुआ, इतने में भाग गए। बोले देख अब क्या करती हूँ। तो एक गोपी वो जो खड़ी देख रही थी उसको बड़ा मजा आया। ब्रज युवती एक पाछे ठारी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबू मेरे घर देखो माखन खात। ब्रज युवती एक पाछे ठारी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबू मेरे घर देखो माखन खात। बैठे जायो मथनिया के ढिंग, मैं तब रहूं छपानी, सूर श्याम प्रभु अंतर जामी, ग्वालिनी मन की जानी, सूर श्याम प्रभु अंतर जामी, ग्वालिनी मन की जानी। ये सूत्र पाठ है माखन चोरी का। ग्वालिनी ने मन में किया कभी मेरा भाग्य जागे और कभी मैं इसी प्रकार अपने घर में भी मटकी में हाथ डालकर श्याम सुंदर को चुरा कर माखन खाते देखूं, ये मटकी के पास आके बैठ जाऊं, मैं छिप जाऊं और पीछे से माखन निकाल ले और खाएं, इस प्रकार भोग लगाए। मन में आया भगवान ठहरे भक्तवान का कल्पतर। ये नैवेद्य लगाने की विधियां बहुत हैं भगवान को भोग लगाने की, पर ये ब्रज में एक नई विधि और निकलती है। हमारा प्रेम राज्य की जो विधियां होती हैं वो सब विचित्र होती हैं, विलक्षण होती हैं। भाई सामने चौकी रखो धोकर गंगा जल से, उसके ऊपर सोने का थाल रखो, बड़े पवित्र भाव से पकवान बनाया हुआ हो वो रखो, फिर वेद के मंत्रों से भगवान का आवाहन करो, नैवेद्य भगवान के भोग लगाओ, नैवेद्य समर्पयामि भक्ति पूर्वक कहो, तब भगवान कहीं भोग लगावे न लगावे। यहाँ गोपी के मन में आया कि मेरे यहाँ भगवान भोग लगावे, पर भोग लगावे मेरी नई पद्धति से, मेरे मन की पद्धति से, मैं छिप जाऊं, रखूं मक्खन इन्हीं के लिए, भोग लगाने के लिए ही, भोग लगाने के लिए मटकी में बड़ा सुंदर मक्खन निकाल करके रखूं और मैं छिप जाऊं और ये फिर चुपके से आवे, कभी सखाओं को भी ले आवे। अच्छा बंदर को लुटा दे पहले, इनको गोपियों को लुटने लुटाने में कोई भी इनके मन में वो दुख नहीं है, तो चाहती हैं बस किसी प्रकार लुट जाए और लुट जाए उनके हाथों, बस दूसरे के हाथ न लुटे। तो इस प्रकार से गोपी के मन में आई, तो गोपी के मन में आई तो सूरदास प्रभु अंतर जानी, ग्वालिनी मन की जानी। अंतर जानी प्रभु ने ग्वालिनी के मन की बात जान ली, उसकी प्रार्थना सुन ली और कह दिया मणि में तथास्तु, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार, इसी प्रकार भोग लगेगा। अब साथ अब जहां स्वीकार हो गई प्रार्थना, मां देर क्या है। दूसरे ही दिन गए श्याम सिंह ग्वालिनी के घर, देखो द्वार नहीं को इतमुत चिते, चलो तब भीतर। कोई अगर अपने घर में चोरी करवाना चाहे तो उसका इंतजाम कर रखता है पहले वो, तो ये तो चोरी करवाना चाहती। इन्होंने क्या किया कि बच्चे उच्चे जो बाहर खड़े थे उनको हटा दिया अलग, कि कहीं वो आवे और आ करके डर के निकल जाए तो ठीक नहीं, वो दिखे नहीं, चोर मजन घुस आवे अंदर। और ये पहले दिन था ना तो छींके पर नहीं रखा, आज नीचे ही मटके में रख दिया कि आते ही उनके हाथ लग जाए। तो साहब अब हुआ क्या हुआ, बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि श्याम सुंदर गोपी के घर में गए, पहुंचते देखा कि दरवाजे पर कोई है ही नहीं, सुना दरवाजा मिल गया, इतने तो चिते चले चलो भीतर, इधर उधर देखा कोई नहीं तो मजे में घर में घुस गए। उसने देखा वो तो बाहर देख रही थी ना, विचित्र बात, अपने घर को लुटवाने के लिए चोर की बात देखे कोई, ये नई पद्धति। तो वो देख रही थी बात कब आवे, देखा आ गया तो हरि आवत गोपी जब जाने आप पुनः रही छपा है। जब देखा कि आ गए तो देखा मुझे देख के भाग न जाए, आया देखकर, चोर को घर में आया देखकर वो छिप गई। सुने सदन मदनिया मथनिया के ढिग बैठे रहे अरगा। जब देखा कि न कोई दरवाजे पर टोकने बोलने वाला और न कोई घर में, तो सूर्य घर में आकर के मोहन चुपचाप मटकी के पास बैठ गए। पहले हाथी डाला, चोरी है ना, चोरी, यूं देखा हाथ डाले, यूं हाथी इसको देख ले, तो पहले चुपके से अरगा करके उसके उसके बगल में ही ठीक बगल में बैठ गए। फिर यूं देखा जब कोई नहीं दिखा तो माखन भरी कमोरी देखते ले ले लागे खान, किते रहे मन खंब छाटा तातू करत सया। हुआ क्या, बड़ी विचित्र बात है, बाल लीला है ना। देखा मटके में छाल तो थोड़ी थी, छाल थोड़ी रख के गई थी, वो तो मक्खन के नौंदे रख रख के गई थी, जितना खाए सारा खाने बड़ा अच्छा, तो निकाल निकाल के छुप कर देखे उन्हें मुंह में डालने, फिर देखे उनको भाई मुंह में डालने खाने लगे। अब देखा क्या हुआ, क्या विचित्र बात, वो जो मणि का खंभा था उस खंभे से वो मटकी लगी रखी थी, उस पर रस्सी बंधी थी, मैया वो बोती हुई मटकी ले रही थी। तो ये जब खाने लगे देखा कोई नहीं, चोर ने देखा कोई नहीं, इतने में क्या देखा कि मणि में खंभे में इनको दिखी अपनी छाया है, तो सोचा ये बालक कोई आ गया, दूसरा कोई बालक आ गया। कितने रहे मणि खंभ छाते तासो करत सयान, बालक आ गया तो बुद्धि उपजाई, बोलिए इसने देख लिया इसने, और ये कि पकड़वा देगा ठीक नहीं, तो इसको रिश्तेदार बना लो, इसे इसके साथ हिस्सा करने। तो उससे बड़ी चतुराई के बाद कहने लगे, बोले प्रथम राज में चोरी आयो भजो बनो है संग, आप खात प्रतिबिंब खिलावत गिरत कहत कारंग। बोले भैया कोई बात नहीं, मैं पहले चोरी करने आ जाया और तुम मिल गए, दो हो गए, अपने मजे में काम करेंगे, हिस्सा आधा आधा, तुम भी खाओ हम भी खाएंगे। जो कह करके खुद खाने लगे, थोड़ा सा अपने मुंह में थोड़ा उसके मुंह में, तुमने जीतक वो दे तो दीख है, अब मणि के खंभे में मक्खन जाए कैसे, तो खंभे में से वो नीचे गिरने लगा मक्खन। जब नीचे गिरने लगा तो बोले देख भैया ये गिरा क्यों रहा है, कारंग क्या मंशा है तेरी, जो चाहो सब देव कमोरी, अति मीठो कत डारत, तुम्हें दे तुम्हें तो सुख पायो, तुम जे कहा बिचारत। डर है ना कहीं चोर को पकड़वा न दे, और ले नहीं रहा है ना, तो शायद मन में सोचता है थोड़ा दिया है, हिस्सा कम मिला। तो बोले भैया कोई बात नहीं, सारी मटकी तुम ले लो, है पूरी मटकी तुम ले लो, बड़ा मीठा है, तुम मेरा खा के तो देखो गिरा क्यों रहे हो, बड़ा मीठा है। और भैया ये मत देखना कि तुमको मैं कोई दे रहा हूं तो दुख पाके दे रहा हूं, तुम्हें देने बड़ा सुख है, जो चाहो सब देव कमोरी, अति मीठो कद डारत, तुम्हें दे तुम्हें तो सुख पायो, तुम ये कहा बिचारत, तीन बार छोड़ा है सारी कमोरी ले लो, तुम चखो तो सही बड़ा मीठा है, और तुम इसलिए अगर न लेते हो कि भाई दुख पाके देता है, बोले ऐसी बात नहीं, तुम्हें देने में बड़ा सुख मुझे मिल रहा है, तुम जरूर ले लो, विचार मत करो। यूं करते करते ये बात कर रही तो वो जो बैठी थी उसको आ गई हंसी, है सुन सुन बात श्याम के मुख की, उमगी हंसी बजनारी, सूरदास प्रभु निरख ग्वाल निमगत भई चले मुरारी। ये श्याम सुंदर की मीठी मीठी बातें खंभे के बालक के साथ होती सुन करके, और उसको आगे हंसी जोर से पड़ी, आनंद बड़ा आया, भोग तो लगी गया, अपनी चीज जो भोग लगाने की थी वो अर्पित हो गई, भगवान ने स्वीकार कर ली। अब ये मीठी बातें सुनी तो आनंद बड़ा आया, तो हंसी रुकी नहीं, हंसी कर तो भागे, फिर वहां भाग गए। अब साहब अब एक नई बात, और उस ग्वाले ने को इतना आनंद आया, जिसके घर में चोरी हो रोता है कि भूलता है, लेकिन उस गोपी के मन में इतना आनंद आया कि वो हर्ष के मारे फूल और जगह जगह फिरती फिरे, जैसे किसी कंगाल को
किसी कंगाल को अगणित धनराशि मिल जाए, किसी अपमानित को महान मान मिल जाए, किसी मरते हुए को अमृत मिल जाए, इस प्रकार से उसको इतना सुख हुआ कि वो अपने सुख को अंदर रख नहीं सके। अब वो उसका मन उनका कि मेरे सुख को सब देख तो ले, तो निकल पड़ी घर से, जो मिले उसी के सामने हंसे और आनंद प्रकट करे। तो ग्वालियर ने पूछा, रे तेरे हो क्या गया? बोली, फिरती ग्वालिनी मन में पूछती सखी परस्पर बातें, पायो परो कछु कहूते। फूली फिरती, फूली फूली ग्वालिनी पन में पड़ रही है, उसको इतने आनंद में मतवाली देखकर सखियों ने पूछा, अरे सखी तुझे कहीं कुछ पड़ा धन मिल गया क्या? कहीं पड़ा धन मिल गया मुफ्त में? यूं सुनते ही उसके रोमांच हो आया, वाणी गदगद हो गई, बोला नहीं गया। पुलकित रोम रोम गदगद मुख बाली कहत न आवे, पुलकित हो गई, रोम रोम पुलकित हो गया, कंठ गदगद हो गया, वाणी निकली नहीं। तो सखी ने कहा, बता तो सही ऐसा क्या हो गया, इतना आनंद में तू भर रही है, बता तो सही क्या मिल गया, कहा मिल गया? ऐसो कहा इसको सखी, हमको क्यों न सुना रहे, ऐसी कौन सी वस्तु मिल गई है, हमको बताना है। तो तब भी नहीं बोली। तब बोली, अरे सखी तुम हम तो दो नहीं है ना, ये शरीर तुम्हारे हमारे दो है, तुम्हारे हमारे प्राण तो एक है, तुम हम दोनों एक ही है। तन न्यारो जी एक हमारो, हम तुम एक है रूप, सूरदास कहे ग्वाल सखिन तू देखो रूप अनूप। सखी ने कहा कि तेरा मेरा तो केवल तन न्यारा है, जीव तो एक है, हम तुम दोनों एक हैं, फिर बताती क्यों नहीं क्या मिला? इतना ही मुंह से निकला कि सखी मैंने आज अनुपम रूप देख लिया, मैंने आज अनुपम रूप देख लिया है। तो कहा क्या देखा? तो फिर वो दोहरा के बताने लगी, आज सखी मणिखंब निकट हरी, जय गोरस को गोरी, निज प्रतिबिंब सिखावत जो सतु प्रगटे करी जन चोरी। सखी मैं आज सवेरे मणिखंब में रस्सी डाल करके मटके में और मैं गोरस बिलो रही, वहां ये श्याम सुंदर गए और बैठ गए और खंभे में एक दूसरे बच्चे को देख करके उसको बालक मान करके और सिखलाने लगे, प्रकट करे जन चोरी, भैया मेरी चोरी किसी ने कह मत देना, अर्थ विभाग आज हमें हम तुम भली बनी है जोड़ी, माखन खाहु कतहीं जारत हो छाड़ दे मत भोरी, बांटन ले हूं सबे चाहे तो यही बात है थोड़ी। कहा कहने लगे, भैया देखो मेरी चोरी की बात किसी कह मत देना, आधा आधा ले लो, तुम्हारा हमारा हिस्सा रहा बराबर, जोड़ी मिल गई तुम्हारी हमारी। अरे फेंक क्यों रहे हो मक्खन को, क्यों क्या सोचते हो, कमती है तो पूरा ले लो, सारी मटकी तुम ले लो, मीठो अधिक परम रुचि लागे तो भर दे कमोरी, बड़ा मीठा है परम रुचि है, सारी कमोरी तुम ले लो। तो सखी कहती है कि सखी जब मैंने ये दृश्य देखा, जब मैंने श्याम सुंदर के मुख से ये वाणी सुनी तो प्रेम उमंगी, धीरज न रहे तो प्रकट हंसी मुख मोरी, सूरदास प्रभु सकुच निरख मुख भजे कुंज की खोरी। जब मैंने ये दृश्य देखा मेरे मन में बड़ी उमंग आई, धीरज रहा नहीं, अपने आप को मैं रोक न सकी और जोर से हंस पड़ी, और मुझे हंसते देख करके प्रभु संकोच में पड़ गए और तुरंत कुंज की तरफ भाग गए। ये हुआ, अब बता मेरे आनंद का क्या ठिकाना, यूं कह करके और वो सखी फिर प्रेम में मूर्छित हो गई। ये दशा अब घर घर की होने लगी। अब श्याम सुंदर ने क्या किया, अब मन में आया किसको बड़ा आनंद मिला है, देखिए ना भक्त वांछा कल्पतरु। श्याम सुंदर ने सोचा अपने मन में कि आज मैंने पहले पहले ये काम किया, इस प्रकार से मैंने चोरी के नाम से भोग लगाया, और इस ग्वालिनी को कितना आनंद मिला, ये निहाल हो गई ना। तो ये आनंद अगर ब्रज की सब गोपियों को मिले तो मन हो गया प्रसन्न। करी हरि माखन चोरी, ग्वालिनी मन इच्छा कई पूर्ण, आप भजे ब्रज खोरी। ग्वालिनी की इच्छा पूर्ण करके स्वयं भगवान ब्रज की गलियों में भाग गए। मन में यह विचार करत हरि, ब्रज घर घर मैं जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाऊं। मन में आया श्याम सुंदर के कि भाई इसको बड़ा सुख मिला, ये सुख और को क्यों नहीं मिले, तो मैं ब्रज में घर घर जाऊं। गोकुल में जो मैंने जन्म लिया इसीलिए लिया है ना, इनको सुख दूं और इनके सुख को देख सुखी हूं, इसी का नाम प्रेम। तो मेरा मन करता सत्य घर जाके माखन खाऊं। बाल रूप जसुमति मोहि जाने, गोपिन मिल सुख भोग, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सुन, ये मेरे बजर। यशोदा मैया तो मुझे बाया के समझती है, बेटा समझती है, और गोपियों के मन में दूसरी भावना भी है। तो गोपियों से मिलकर मैं उनके प्रेम रस का आस्वादन करूंगा। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम सुंदर ने मन में सोचा कि ये मेरे ब्रज लोग, ये जो ब्रजवासी तो मेरे ही हैं, इनको सुख देना चाहिए। इस प्रकार से बस जगह जगह काम रोज होने लगा। ब्रज घर घर प्रगति यह बात, ब्रज माखन चोरी करी ले हरि, ग्वाल सखा संग खान। पहले अकेले गए, दूसरे दिन सखाओं को ले गए, अब तो छींगों पर हाथ मारने लगे। फैल गई बात, ब्रज में घर घर में फैल गई बात। अब तो सबके मन में आज हमारे घर आवे, आज हमारे घर आवे, कल उनका आज हमारे घर आवे, हमारे यहाँ भोग लगावे। ब्रज घर घर प्रगति यह बात, ब्रज माखन चोरी करी ले हरि, ग्वाल सखा संग खात। ब्रज बनिता यह सुनी मन हरखित, सदन हमारे आवे माखन खात। अचानक पावे भुज हरि उरहि छुआवे, मन ही मन अभिलाष करत सब, हृदय धरती ध्यान, सूरदास प्रभु को घर पे लें, दहीं माखन खान। वाह, ब्रज के घर घर में ये बात फैल गई कि श्याम सुंदर और दही और मक्खन चोरी करके खाते और गोप सखाओं को खिलाते हैं। तो ब्रज की गोपियां सुन करके सब के सब हर्ष में भर गईं, बोले तब तो हमारे भी आने। सोचने लगी कि मोहन हमारे घर कब आए आए और उन्हें मक्खन खाते देख करके अचानक प्राप्त कर लें और प्राप्त करके हृदय से लगा लें। सब मनी मन ये अभिलाषा करने लगी, सब हृदय में उनका ध्यान करने लगी। सूरदास जी कहते हैं कि भाई तुम्हारे घर भी आएंगे मक्खन, तुम अपने घर से उनको खाने को दो, तुम्हारे घर भी आएंगे। चली ब्रज घर घर यह बात, चली ब्रज घर घर यह बात, नंद सुत संग सकारी ने चोरी माखन खात। चली ब्रज हे घर घर यह बात, को कहती मेरे भवन को कहती मेरे भवन भीतर अबहीं बैठे धाय, को कहती मुई देख द्वारे उत ही गए पराय। चली ब्रज हे घर घर यह बात, को कहती की भांति हरि को देखो अपने धाम, हेरी माखन दे आछो खाए जितनो श्याम। चली ब्रज घर घर यह बात, को कहती मैं देख पावो भरी धरू अखबार, को कहती मैं बांध राखू को सके निर्वार। चली ब्रज घर घर यह बात, सूर प्रभु के मिलन कारण करत बुद्धि विचार, जोड़ी कर विधि को मनावती पुरुष नंद कुमार। चली ब्रज घर घर नी, अब जब ये बात फैली तो अब ब्रज के घर घर में कोई चर्चा रहने की दूसरी, गृहस्थों का घर और सब के सब घरों में गोपियां, कोई घर बिना गोपी के नहीं। तो प्रत्येक घर में केवल एक चर्चा रही और कोई चर्चा नहीं। तो क्या चर्चा फैली, लोगों ने कह दिया सुन लिया और बात फैल गई कि भाई नंदलाल जो है नंद नंदन के सखाओं के लिए वो रोज चोर चोर के माखन खाते। कोई अपना अनुभव सुनाने लगी और कोई अपना मनोरथ सुनाने लगी। तुम कहते मेरे भवन भीतर अभी बैठे जा। ये चाचा कोई वो भी बोली कि मेरे घर में तो अभी घुस के गए, अभी अभी आए थे और अभी अभी माखन खा के गए। कोई बोली कि अरे तेरे घर तो खा गए, पर मैं भूल से दरवाजे पर खड़ी रह गई थी, मुझे देख करके भाग गए। कोई कहती है कि तुझे देख के तो भाग गए, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में कैसे हुए आ जाए। तुम कहते कई भांति हरे को देखूं अपने धाम, कैसे ही तो मेरे घर में आ जाए, उनको मैं अपने घर में देखूं और बढ़िया से बढ़िया माखन जितना वो चाहें उतना उन्हें खिलाऊं। हेरी माखन देऊ आठो खाई चलो शाम। किसी ने कहा कि एक बार आ तो जाए मेरे घर में, फिर तुम्हें भुजाओं से पकड़ लूंगी, जाने दूंगी जाने दू। वो कहते मैं देख ही पाऊं भरी धरो अखबार, और कोई बोली अरे तुम तो खाली हाथों से बांधोगी, मेरे घर आवे अगर कोई तो मैं सचमुच बांध ही रखू उनको तो कुछ छुड़ा ना सके। तुम तो कहते मैं बांध ही रखू, हो सके मेरे भाई किसकी ताकत है कि मेरे बांधे हुए को छुड़ाने कोई मेरे घर में एक बार आ तो जाए।